نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المهدي الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه الفال فمر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، ہم سب ایمان والے ہیں الحمدللہ، اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور اس دولت کے بعد ہمیں یہ شعور، یہ سمجھ، یہ ہمت عطا فرمائی ہے کہ ہم اپنے رب حقیقی کو راضی کریں، اپنے محبوب کو تلاش کریں، اصل جو محبوب حقیقی ہے ہمارا اس کو پائیں. حقیقت میں یہی ہے کہ شعوری طور پر بھی اور لاشعوری طور پر بھی ایمان کے بعد ہر آدمی جو ہے اسی کوشش میں لگتا ہے کہ اپنے رب کو تلاش کرتا ہے. یہ سارے راستے جو انسان اختیار کرتا ہے، جتنے بھی ہیں، یہ سب رب حقیقی تک پہنچنے کے راستے ہیں. منزل ہماری ایک ہی ہے کہ اپنے رب کو پا لیں ہم. کچھ بیچارے تھک جاتے ہیں، کچھ مایوس ہو جاتے ہیں، کچھ گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ نفس اور شیطان وسوسے بھی پیدا کر دیتا ہے. مجھے اپنے حضرت نور عمر قدو کا ایک قول یاد آتا ہے، بہت ہی خوبصورت بات، کہ بھائی محبوب کو پاؤ نہ پاؤ لیکن تلاش جاری رکھو، ہمت نہ ہارنا کبھی. تو یہ ہے حقیقت میں اللہ والوں کے نسخے، بڑے زبردست، کہ اس راستے کے اندر انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اپنی تلاش کو جاری رکھے کہ اپنے رب کو پانا ہے، ہم نے ہماری زندگی کا مقصد ہے اپنے رب تک ہم پہنچیں. اور ظاہر ہے اس رستے میں جو انسان چلتا ہے تو جو رکاوٹیں ہیں، جو معاملات ہیں، ان کی طرف انسان توجہ فرمائے. کیا کیا چیز ہے جو اللہ کو پانے میں انسان کی رکاوٹ بنتی ہے؟ کون سے پردے ہیں جو ہمیں اللہ تک نہیں پہنچنے دیتے؟ کیا چیزیں ہیں جس سے ہم اپنے رب کو نہیں پا سکتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تھا، یہ اول عظم نبی تھے، وہ بھی بہت بڑے نبی تھے، کہ دادا جی یہ بتائیں میں اپنے رب کو کیسے پالوں؟ تو حدیثہ نے کیا جواب دیا؟ اس پردے کو بتایا جو حقیقت میں پردہ تھا. حدیثہ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ اکبر، کہ دنیا کو تو دشمن بنا لے، اللہ تجھے محبوب بنا لے گا. راز کھل گیا سارا، کہ اس تلاش، محبوب کو تلاش کرنے میں جو سب سے بڑا پردہ ہے اور سب سے بڑے رکاوٹ بنتی ہے، جو انسان کو مایوس بھی کر دیتا ہے، دور بھی کر دیتا ہے اور پانے بھی نہیں دیتا، وہ کیا ہے؟ حب دنیا ہے، دنیا کی محبت ہے. یہ نہیں کہا وہ دنیا چھوڑ دو، بلکہ کیا کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، تو دنیا کو تو دشمن بنا، یعنی دشمن اس کو بنائے گا، اللہ محبوب تجھے بنائے. تو کتنی ممتاز چیز ہے. تو یہ سب سے بڑا ٹیسٹ جو ہمارے سامنے اللہ پاک نے رکھا ہے، اس دنیا کی محبت کو دنیا کا ہے، کہ یہ پردہ گر جائے نا، ہٹ جائے، تو الحمدللہ چند فاصلے پہ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو قریب مل جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ساری بات کوششوں کے باوجود بھی انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ رب کو نہیں پایا. رب کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس سے ایک کپ پہ ہم نے اس کو پا لیا، یا کوئی ऐसी चीज है उसको हासिल कर लिया नहीं। रब के पाने की भी एक अजीब लज्जत है, वो लज्जत ही बताती है मैंने अपने रब को पा लिया, कैफियत है एक इंसान के अंदर, वो नूरानियत है, एक कैफियत बन जाती है। छोटी सी उसकी मिसाल आपको देता हूँ कि बाज दफ़ा ऐसा होता है इंसान पे कि तलावत कुरान करने बैठा है, करते करते बाज दफ़ा अल्लाह कभी जल्दी डाल देता है तो बड़ा लुत्फ आने लगता है कुरान की तलावत में, आते हैं बाज दफ़ा नमाज पढ़ने लगता है आदमी या किसी की नमाज पीछे पढ़ने लगता है, तो बास दफ़ा देखता है कि कैफियत ताजी होती है इंसान पर थोड़ी देर के लिए, झलकी सी आती है इबादत के अंदर, क्योंकि ये रास्ते हैं ना अल्लाह को पाने के, ये रास्ते जो इन चीज़ों हमने तलाश करना है अल्लाह ताला, ये नमाज हुआ, रोज़ा हुआ, हज हुआ, ज़कात हुआ, सदक़ात हुए, ये सारे रास्ते अल्लाह पाक ने दिए हैं कि मुझे पाओ। लेकिन वजह क्या है कि रास्ते पर तो हम चल पड़ते हैं लेकिन रास्ते की रुकावट को हम नहीं हटाते, उसको अख्तियार कर लेते हैं रास्तों का किए हुए हैं, लेकिन जो रुकावट है, जो कितनी बड़ी रुकावट दुनिया, उसको आगे से नहीं हटाते। मिसाल के तौर पर हम सड़क पर चल पड़े हैं कहीं जाने के लिए, अब सड़क पर जो पत्थर पड़े हैं उनको नहीं हटाएंगे तो गाड़ी कैसे आगे चलेगी, रास्ता तो अख्तियार कर लिया हमने, ज़राए हमने ले लिया लेकिन पत्थर नहीं हटाए जा रहे। तो इसी तरह कि नमाज रोज़ा ज़कात हम सब करते हैं लेकिन उसके रास्ते में जो दुनिया है रुकावट, उसको नहीं हम हटाते, उसको दूर नहीं करते। जब तक वो नहीं हटेगी रास्ता नहीं क्लियर होगा, जा ही नहीं सकते, पहुँच ही नहीं सकते। तो दुनिया ही कैसा बेहरी है, क्योंकि आप मैं इसी खसूसी हम लोग इसलिए जमा हुए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अल्लाह के मतलाशी हैं और उन लोगों के साथ बैठते रहें, अल्लाह वालों की बातें सुनी, बुजुर्गों के जूते में बैठे हैं कुछ देर, तो यही बातें समझ आई और इसी कैफियत को लेकर इंसान अल्लाह वालों के पास जाता है, यही ख्वाहिश वहाँ तक पहुँचाती है, यही ख्वाहिश इंसान को चाहती है कि किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक़ रखता है, दोस्ती रखता है, तो और कोई वजह नहीं होती। ये ख्वाहिश इतनी बढ़ा देते अल्लाह पाक कि तलाश, जैसे मेरे हजरत ने फरमाया कि तलाश को जारी रखो, तो तलाश होते होते कभी इंसान उस रास्ते पर भी आ जाता है कि अल्लाह वाले तक पहुँच जाते हैं कि शायद इसी तरफ से मुझे रास्ता मिलना शुरू हो जाए। ये भी तो एक रास्ता है जो अल्लाह ताला इंसान को दिखा देता है, और बड़ा अच्छा रास्ता है और सही रास्ता है। अल्लाह वाले के पास बैठने के बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मामला बनने शुरू हो जाते हैं इंसान के। तो जो चीज़ है दोस्तों, दुनिया दुनिया दुनिया, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इस इंसान इस पर दो इंसान गिरा देगा अल्हम्दुलिल्लाह तो फिर काम बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी भी है कि अजीब देखें कैसी हदीस है, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो दुनिया में मशगूल हुआ, दुनिया की कैफियत बताया है, जो हसूल दुनिया में मशगूल हो गया, जिसका मकसद ही हसूल दुनिया है, तशरीह कर रहा हूँ हदीस की, जिसका मकसद ही हसूल दुनिया है, तो उसको अल्लाह से क्या सरोकार, अल्लाह को उससे क्या ताल्लुक, अल्लाह को उसको सरोकार क्या, जिसको मकसूद ही हसूल दुनिया है, दुनिया दुनिया दुनिया, इधर से दुनिया है, उधर से दुनिया है, चार के दो पांच भाग भागा फिरा दुनिया के अंदर, दुनिया जो है ममनू नहीं है, याद रखे वो पे दुनिया मना है, क्यों, अगर दुनिया को ममनू कर दें तो ये कारोबार कैसे चलता, ये पेड़ को कैसे पालते, बच्चों को कैसे पालते। तो क्या है इस्लाम के अंदर, हुब्बे दुनिया मना है, दुनिया बकदर ज़रूरत उसको हासिल करना, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जायज़ है शरीयत के अंदर, बकदर ज़रूरत दुनिया को हासिल करना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन ढेरों दुनिया जमा हो और आगे तरफ भागते फिर इधर से दुनिया का मालूम, इधर से भी कमा लूँ, इधर से कमा लूँ, इसको कहते हैं हसूल दुनिया, हुब्बे हसूल दुनिया है, मशगूल हो गया दुनिया के अंदर। हदीस बता रहा हूँ नबी पर तुम कहते हो उससे अल्लाह क्या सरोकार, चाहे कितने रास्ते अख्तियार कर ले, ज़ाहिर है कितने बड़े बड़े रास्ते अख्तियार कर ले, 10,000 दफा चला जाए, खाना खावा के चक्कर काट ले, एक एक लाख दफा तस्बीह कर ले, जो कुछ भी कर ले, लेकिन उसका मकसद हसूल दुनिया है, दुनिया को छोड़ ही नहीं रहा, पर्दे को हटा ही नहीं रहा, वो तो टक्कर मारता रहे, वो तो अपने मकसद में लगा है। तो अपोजिट बताया है नबी पाक ने इसका, कि ऐसे इंसानों का क्या हाल होता है, अल्लाह अकबर, कि बजाय अल्लाह को पाने के तो उस अल्लाह उनका सरोकार क्या अल्लाह से, बल्कि चार चीज़ें अल्लाह पाक उन पर मुसलत फरमा देते हैं। गौर से सुनिए ये बात, कि मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि आप माशाल्लाह सूफी हजरात हैं, तस्की की लाइन पर हैं, मैं भी आपके साथ हूँ, तो तालिब इल्म इस लाइन के, तो जितने भी वक्त है उस पर हम सर्व करें कि हम सही रास्ते पर चलें और अल्लाह को पाएँ, अल्लाह को तलाश करें। ये बातें ये इसका कोई मकसद होता है, मैं तकरीर नहीं कर रहा। जो अल्हम्दुलिल्लाह इन मोतियों को चुन लेता है, हमने भी फ़कीरों के पास से जो मोती चुनने उस पर अमल किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अमल करने के बाद कम से कम थोड़ी समझ आ गई कि भाई हमें ये काम करना है। इसको अगर तकीर समझा बस जी बात सुन के आ जाएँ, हजरत ने तकीर की है, हजरत ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, वो ऐसी जगहों से कुछ हासिल नहीं करता। गौर करें, हदीसें सुना रहा हूँ कि कितना वक्त हम ज़ाया कर चुके हैं। अब देखें कि जो का मकसद है असूल दुनिया, भागते फिर रहे इधर से दुनिया, टांगे मारता बस इधर से दुनिया, इधर से दुनिया, इधर से मार, उसका मकसद यही है। बस खुश ये होगा कि मैं तो नमाजें पढ़ रहा हूँ, जिक्र भी कर रहा हूँ, कुरान भी पढ़ रहा हूँ, अल्लाह को पाया, जो मकसद है हमारा। मकसद इबादत तो नहीं है हमारी, मकसद नमाज नहीं है, कि मकसूद नहीं है। मकसूद कौन है? रब है। जिस नमाज से रब ही ना मिले वो नमाज किया, मुझे बताएं। जिस काबे से रब ही ना मिले तो वहां जा वो काबे ही कह रहा। अक्सर मकसद तो रब है, पाना रब को है। अगर हम इनको मकसूद बना लें तो शिर्क है, ये तो शिर्क हो गया। मकसद को कभी शिर्क, आप वो हसूद जो मकसद है उसको तो आप मकसद हासिल करना और चीज़ है, और ज़राए मकसद जो है वो और चीज़ है। ज़राए को नहीं बना, मकसद हमारा जो है रब है, अल्लाह को तलाश करना, अल्लाह को हमने पाना है। तो ये रास्ते हैं, रास्ते मकसद नहीं हो सकते इंसान के। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, बात समझ आ रही है मेरी? तो ये भी गलत फहमी है हमारी। नमाज पढ़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन मकसद तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, सबको हासिल किया या नहीं किया। दुनिया का पर्दा हटा तरफ सामने, वो नहीं तो बस फिर किसी ना किसी बहाने से ये दुनिया इसलिए कमा रहा हूँ, ये दुनिया इसलिए कर रहा हूँ। डेरों मौजूद हैं कि अगर वो मर जाए तो इतने पैसे छोड़ के जाएगा, इतनी चीज़ें छोड़ के जाएगा, माशाल्लाह लोग मज़े करेंगे इतने कपड़ों में। लेकिन क्या है हसूल जिंदगी से मकसद? मकसद ये क्या बन गया? माल बैठा सोचते रहता है बस, आज उधर चला जाऊँ, वहाँ से कमा लूँ, इधर से निकाल लूँ, उसके पैसे ये कर लूँ, फलां करूँ, उसके चार से पाँच कर लूँ। हालांकि अल्लाह का फजल है, बकदर ज़रूरत मौजूद है, रिज़्क अल्लाह देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ये नहीं है, आप सुने हदीस, जो ये नहीं है बकदर ज़रूरत नहीं, बल्कि उसका क्या मकसद है असूल दुनिया है, अल्लाह ने फरमाया फिर चार चीज़ें अल्लाह उसको मुसरत फरमाता है। दायमी गम अल्लाह पाक उसको दे देते हैं, उसका गम मिटता ही नहीं बेचारे का। दायमी फिक्र दे देते हैं उसको, दायमी अफलास दे देते हैं। ये अफलास बड़ा अजीब अफलास है। एक तो भूखा होता है ना, अफलास समझते हैं पॉवर्टी जिसको हम कहते हैं, एक वो पॉवर्टी जो होती है उसको इंसान फिर भी पॉवर्टी में जिंदगी गुजार देता है। लेकिन ये जो पॉवर्टी है कि होने के बावजूद इंसान का गरीब होना, ये बड़ी जालिम चीज है, ये बड़ी जालिम चीज है, उसको आराम ही नहीं होने देती, जिंदगी की फुर्सत ही नहीं देती कि बैठ के कभी कोई दिल के साथ अल्लाह को याद कर ले, अल्लाह को पा ले, कभी दुआ सुन अल्लाह के कुरान को पढ़ते किसी आयत पे गुब हो के दुआ सुन उसके निकल जाए, कभी सुकून के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाए, कभी ऐसा मराकबात हो जाए। इसलिए नहीं तो सबक हमारे बस जी हमने कर लिए, शीट बना दी, इतने सबक हमने कर लिए, जिक्र कर लिया, ये क्या बात है? क्योंकि कोर्स है, क्योंकि कोर्स तो नहीं हम कर रहे, ये तो पाबंदी हिस्सा, ये कोर्स तो नहीं है असल। देखिए एक दफा अल्लाह कहने से इंसान किस मनाजिर पर पहुंच जाता है। ये जिक्र को ये मामूली चीज है, इतने बड़े खजाने आप नहीं पढ़ते फजाइल जिक्र के अंदर। जो शख्स ला इला इल्लल्लाह का विर्द करता है, वो उसी वक्त वो कलमा उसको लेकर अर्श तक पहुंचा देता है, रुकता नहीं, अर्श तक पहुंच जाता है इंसान उस कलमे के जरिए। शर्त है कि दुनिया ना हो उसके अंदर, तब पहुंचता है। ला इला इल्लल्लाह ला करते रहो वो तो वही इंसान जो चक्कर काटता है, मकसद को नहीं पा रहा इंसान। बातें छोड़ी मेरी कड़वी होती हैं, पिंचिंग होती हैं, लेकिन बातें हकीकत बता रहा हूँ। नाराज ना होना मेरे से क्या साहब कहते हैं, हम जिक्र करते हैं, हमें ताने मार, कुछ नहीं ऐसी बात है, ये हकीकत बता रहा हूँ। डाउन नहीं कर रहा, अप कर रहा हूँ आपको, आगे चलो, आगे बढ़ो, दुनिया को निकालो, कब्र बहुत नजदीक है। सबसे पहले जो हमें कब्र के अंदर बर्बादी करने वाली चीज आएगी ना सामने, वो दुनिया आएगी सबसे पहली चीज। वो दुनिया जो कब्र के अंदर पहली सवाल जो दुनिया का होगा कि दुनियादार शख्स अंदर कैसे जा रहा है, और एक फकीर शख्स कैसे जा रहा है, जमीन आसमान का फर्क होगा उस दुनिया के अंदर। जो दुनियादार बादशाह माल कमाने वाला मशहूर दुनिया, जब वो अंदर दाखिल होगा तो वो पारा पारा होगा, फकीर होगा, और जो फकीर ऊपर होगा वो जो खबरें हो जाएगा वो शहंशाह होगा। क्या क्या आप देखें कि कितना अपोजिट मामला हो गया, जिसके लिए सारी जिंदगी हमने गुजारी वो क्या हो गया, वो एक सेकंड कब्र को देखेगा तो फुकर ही फुकर होगा, वो अफलास नजर होगा। और जो गरीब होगा बेचारा ऊपर, जिसने कुछ जिंदगी देखा, वो अंदर जाएगा तो महल्लात खुले होंगे उसके, माशाल्लाह ख्वाहिशात के भाग लगे होंगे दिल पर। ये समझने वाली चीजें हैं, ये हदीसें जो है ये समझने वाली चीजें हैं। ये बयान करने वाले नहीं है कि ये इल्म जाहिर करने के लिए या दावे करने के लिए, फलां की हदीस रवायत की है, फलां की है, ये वो हो रहा है, उस पर झगड़े और फसाद कर, नहीं भाइयों, ये हदीस जो है ये तो नूर हैं, ये कुरान की आयत नूर हैं जो इंसान को रोशनी देके आगे बढ़ाती हैं, तो आगे लेके जाती हैं हर कदम पर इंसान। ये लड़ने झगड़ने वाली बातें नहीं है, ये तो बहुत ऊंची चीज अल्लाह पाक ने हमें दी है, जो निशान है। चार चीजें बताई, दायमी गम उसके पास हो, दायमी फिक्र उसके पास होगा, दायमी इफ्लास उसके पास होगा, दायमी मशगूलियत होगी। और जो लफ्ज प्यारे आका नबी की ज़बान मुबारक से निकल जाए, मुझे बताएं वो कितने मुस्बत और सच्चे लफ्ज होंगे, कोई इससे इनकार कर ही नहीं सकता दुनियादार आदमी। चार चीजें वक्त मौजूद होंगी, दायमी मशगूलियत, हर वक्त टेलीफोन उसके कान से लगा रहेगा, टूं टूंग होता रहेगा, हर वक्त टेलीफोन में ध्यान। अब तो चीज भी ऐसी बन गई ना टेलीफोन, पहले जमाने तो कुछ और थे, अब तो हर वक्त को बिजली जलती रहती है उसकी, क्या जिक्र में बैठे क्या जिक्र से बाहर, बिजली टिक टिक कर रही होती है, साइलेंस पे लगा दो, वाइब्रेशन पे लगा दो, लेकिन वो कनेक्शन दिल के साथ लगा रहता है उसको। हाँ, इमाम मस्जिद में भी इमाम साहब को कहना पड़ता है, भाई ओ टेलीफोन अपने बंद कर देना, भाई ओ टेलीफोन, फिर उसके बावजूद भी वो टेलीफोन याद करा रहा होता, दुनिया 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 है या नहीं है। कहाँ खड़े हैं, उस रास्ते पर खड़े जो सबसे अजीम रास्ता है अल्लाह 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 को पहुँचाने वाला, नमाज है या नहीं सबसे बड़ा रास्ता। और फिर कहते हैं नमाज में तो अल्लाह मिले ही, फिर मायूस, तसली नहीं होती, बल्कि अजीब अजीब बातें करते, मैं तो जी मायूस हो गए, मेरे तो एतबार उड़ गया, आई डोंट ट्रस्ट ऑन अल्लाह। ये भी कह देते हैं लोग कि मेरा ट्रस्ट ही उड़ गया अल्लाह ताला से, मैं कुछ बन ही नहीं रहा, जो मांग रहा मिल ही नहीं रहा, मेरी तबीयत सही हो ही नहीं रही। अजीब कौन है, अल्लाह से ट्रस्ट उड़ गया, चलो उससे शिकायत शुरू कर देंगे, अल्लाह से क्यों उस पर मुकदमा कर दिया, भाई तू बस तेरी नमाज पढ़ी, हमने तेरा रोजा किया, एक ही वहीं के वहीं है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, फलाँ नहीं हो रहा। हम समझते हैं नमाज इसलिए पढ़ी जाती है अपने मकसद को हासिल करने के लिए, नमाज तो एक रास्ता है जो तलाश करती है अपने महबूब को, तो महबूब तक ले जाने वाला रास्ता है। कहा नहीं मैंने, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा है, ही नमाज का मकसद क्या है कि जब तुम सजदे में जाओ तो क्या मिले तुम्हें, मेराज मिले, और मेराज में क्या मिला था, रब मिला था, मार्फत मिली थी अल्लाह के नबी को। यह मोमिन को कहा जा रहा है कि मकसद जो नमाज का क्या है, जिसको तू तलाश कर रहा था वो रब तुझे मिल जाना चाहिए सजदे के अंदर, जब तेरा माथा उठे तो तू वाकई रब को लेके उठे कि मैंने तलाश कर लिया अपने रब को जिसको मैं तलाश कर रहा था। ये बहुत ऊंची बातें नहीं कर रहा हूं, ये हर हर मोमिन की मंजिल है, ये नहीं कि अल्लाह वालों की बातें हैं कोई बहुत दरेशन, तो आदमी मोमिन की मंजिल है कि कुछ नहीं है तो जिंदगी बेकार कर रहा है, बहुत बड़े धोखे में वो शख्स जो अपनी इबादत के साथ हम अपने रब को नहीं पा रहे, अपनी मंजिल को नहीं पा रहे। मुझे पता है कितना बड़ा धोखा है कि मैं गाड़ी भी हो सब कुछ हो और मैं मंजिल पे ना पहुंच सकूं, वो सबसे बड़ा धोखा है कि मुझे मंजिल की रास्ता क्यों नहीं मिल रहा, पहुंच क्यों ना अपनी मंजिल पे। ये हदीसें बता रही है, अल्लाह ने फरमाया बजाय तो मंजिल पाने के मशगूलियत है जो दुनिया है तुझे, असूल दुनिया जो तुझे कुत्ते की तरह भागा फिक्रती है, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से इधर, हर वक्त तू इससे उस फिक्र में रहता है, वो तो चार चीजों में तुझे मुबतला हो गया, तो अल्लाह तुझे कहाँ मिलना, काम है ना। हाँ समझ आ गई, अब ये पर्दा इतना बड़ा है हमारे सामने भाइयों, मैं भी अब समझ दुनिया जो हो ये तो बड़ा मुश्किल है, वाह हम भूखे मर जाए जी, हम ये कर लें जी, हमारा फलां हो जाए जी, हमारा हम ये कर दें, ये भी लोग शुरू करते हैं। अल्लाह अल्लाह गारंटी दे रहा है कि तू बकत जरूरत मांग उससे, वो इतना बाकदर जरूरत जो मैं तुझे दूंगा इतनी बाबरकत चीज होगी कि किसी चीज की कमी रहेगी नहीं तेरे अंदर, रहेगी नहीं कमी। क्यों भागता है कुत्ते की तरह, भागता पीता पागलों की तरह।
اگر جہاں تک ضروریات کا تعلق ہے, جمع کرنے کا تعلق نہیں, اگر اللہ سبحانہ کہتے ہیں جمع کرنے والا میرا بینک سسٹم نہیں ہے, میرا تو کھاؤ اور دوسرے کے بھول جاؤ کہ کل آنی ہے یہ نہیں آنی, آج کی روٹی کا وعدہ آج دوں گا تجھے. جو یہ یقین کر لیتا ہے کہ صرف آج ہی کی روٹی مجھے چاہیے, میں قسم کھا کے تم اس کو آج کی روٹی ضرور عطا فرما دیتا ہے. یہ تو لوگ یہ بس ہی مانگتے پھرتے ہیں خیرات میرات ہمارے ملکوں میں, یہ تو یہ قناعت نہیں کرتے یہ اللہ تعالیٰ پہ, بکواس کرتا ہے, کوئی بھوکا رہ ہی نہیں سکتا ایک روٹی. یہاں تو میں آپ کے اپنے حضرت کے والد صاحب کی بات بتا رہا ہوں, حضرت فرماتے تھے کہ ان کا ماحول ولیوں کے گھروں میں پھر یہی ہوتا ہے نا, اللہ والوں کے گھروں تو یہی کام ہوتا ہے. کہتا وہاں تو ہمارا یہ ہوتا تھا, حضرت فرماتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے تھے, میرے والد صاحب کیا کرتے تھے, جس وقت رات ہو جاتی بکریوں کو اندر لے آتے, بکریوں کو لا کے ادھر باندھ دیتے رات کو چلانے کے بعد, اور پھر میری امی امی سے پوچھتے کہ بھائی ہمارے گھر میں کچھ ہے, وہ ہونا کیا تھا وہاں کچھ بھی نہیں. تو یہاں تک کہ ہر چیز اگر کوئی ایک دو روٹی بھی ہوتی ہے, ایک روٹی بچی ہوتی تو اس کو صدقہ کر کے باہر کھلا دیتے یا دیتے کسی کو, یعنی بیسٹ پہ جانے سے پہلے, بستر پہ جانے سے پہلے پہلے وہاں دستور تھا کہ فوراً عشاء کے بعد لوگ سو جاتے تھے, چراغ بجھ جاتے تھے, تہجد کی تیاری ہوتی تھی. ہمارے تو چراغ جلتے ہیں عشاء کے بعد, محفلیں جمتی ہیں, عورتیں بیٹھتی ہیں, غیبتیں ہوتی ہیں, اور پھر تو ماشاء اللہ کیا کیا چیزیں چلتی ہیں, وہ دیوانوں کے برابر چیزیں ہیں ماشاء اللہ جس پہ تماشے ہوتے ہیں. ہمارا کام ہی عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے, شادی ہماری عشاء کے بعد ہوتی ہیں. جتنے اندازہ لگائے ہم رب کو پانے کا, پھر شکایتیں ہیں نو ہمیں تو رب ملتا ہی نہیں ہے جی, اس پہ مایوس تھیں, اس پہ شکایتیں, اس پہ تہمتیں. کتنا کنٹراسٹ ہے ہماری چیز میں, کتنا عجیب معاملہ ہے. اور اسی حال ہم قبر میں جا رہے ہیں, پھر جاگو میرے بھائیوں, جاگو خبر کے لیے تیاری کرو, اصل تیاری کرو, اصل لائٹیں جلاؤ. عشاء کے بعد تو نہیں ہونا چاہیے, کسی دینی کام میں مشغول ہو جائیں الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے, دنیا میں کام سے کیا بات, اس کے بعد معاملہ نہیں. تو ہاں فرماتے تھے حضرت کہ وہ تو شام کے بعد سب کچھ کے بعد سب چیزوں کو, اگر پانی جو مٹکے میں پانی ہوتا تھا اس کو بھی گرا دیتے تھے. فرمائیے توکل کے خلاف ہے, جس رب نے آج مجھے دیا کل بھی دے گا. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی چیز ہماری رات کو بچی, ایک کھجوری ہوتی تھی اس کو باہر فارغ کر دیتے تھے. کتنا توکل تھا آج تک, ہم تو بھوکے مری روٹی ملتے, ہاں روٹی سے مراد کیا ہے پیٹ بھرنے والی روٹی. فرماتے تھے کہ میں نے دہی کے ساتھ میں نے روٹی کھائی, حضرت فرماتے تھے بیٹھے ایک دفعہ کہتے ہیں میں دہی کے ساتھ روٹی کھا کے آیا ہوں, ہمارے دو روٹی تھی پورے خاندان نے, اس پر الحمدللہ پورا ہو گیا, ایک دہی کا پیالہ سا تھا اس کے اندر دو روٹی تھیں, تو ساری فیملی ہم نے بیٹھ کے کھا لی. سوچیں ذرا, تو اب میں آپ کے سامنے بیٹھوں, کوئی بات چل رہی تو ہنس کے فرما رہے تھے, بڑے درویش لوگ بیٹھے تھے تو تربیت کی ایسی بات کرتے تھے نا, ہنس کے فرماتے تھے کہ بھائی یہ آپ لوگ کوئی مرغن کھا کے آیا ہوگا, کوئی مرغا کھا کے آیا ہوگا, کوئی چکن کھا کے آیا ہوگا, یہی ہے نا سب کچھ کھا کے آیا ہوگا. کہتے ہیں میں آپ نے جو کھا کے آیا ہوں, میں دو روٹی سوکھی اور اس میں ساروں نے شیئر کیا اور دہی کے ساتھ ہم لگا کے کھائی, تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں کوئی فرق نظر آ رہا ہے بیٹھے میرے میں اور آپ میں, کیا فرق نظر آ رہا ہے, پیٹ سب کا ویسے ہے یا نہیں ہے؟ پیٹ تو سب کا بھرا ہوا ہے, میرا پیٹ روٹی اور دہی سے بڑھ گیا, تمہارا مرغن غذاؤں سے بڑھ گیا, تو فرق کیا ہوا؟ تو بھرنا تو پیٹ تھا, الحمدللہ مطمئن ہے طبیعت. اس کو کہتے ہیں قناعت, اس کو کہتے ہیں مشغولی دنیا نہیں بلکہ کیا ہے آخرت. اور ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے, اللہ معاف فرمائے, ملتان کے ایک ڈاکٹر نے بتایا, کس نے تقریر مولوی نے بات بھی کر دی تھی, ایک صاحب تھے میری طرح دنیا دار بیچارے, ان کو ہو گیا ہارٹ اٹیک. یہ میں صحیح باتیں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ دیکھیں دنیا کہاں لے جاتی ہے آدمی, تو ہارٹ اٹیک ہو گیا, تو ان کو لے گئے نشتر ہاسپتال ہے ملتان کے اندر, بہت بڑا ہاسپٹل ہے, اس میں داخل کرا دیا. تو ڈاکٹر جو تھے وہ نیک آدمی تھے ماشاء اللہ, ماشاء اللہ سب کچھ اچھے تھے, کنسلٹنٹ تھے اس کے ہارٹ وغیرہ کے, بہت اچھے تھا. تو کہنے میں نے پوری کوشش کی کہ بھائی ان کا میں علاج صحیح دیکھوں, تو وہ ہوتا ہے نا آنکھ میں کوئی, وہ فارغ ہو چکے تھے بیچارے, سانس وانس رک چکی تھی, تو انہوں نے پھر اوپر وہ جم شم مارتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں جس طرح کرتے ہیں, تو اللہ نے زندگی دینی تھی ان کی, تو فرمایا اس کو سانس آ گیا, سب نا امید ہو چکے, ختم ہو چکا ہے. تو میں نے آخری حربل میں آ کے آخری اسٹیج پر آ کے میں نے اس کو دبایا دوا ہے, تو ان کا سانس آ گیا, تو سانس آیا تو انہوں نے آنکھ کھولی. اب یہ جو میں آپ بتا رہا ہوں دنیا کی مشغولیت کہاں کام آتی انسان کے, آج تو پتہ نہیں چل رہا, وہ چلے ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں, پتہ اس وقت چلتا ہے جب انسان موت آتی ہے, یہ چکر کرنے والا تھا یا دنیا کا ماننے والا آدمی تھا, اس کو پتہ لگ جاتا ہے آدمی, منزل تو نہیں لی تھی اس نے, منزل تو نہیں پکڑی تھی اس نے, دنیا تو نہیں چھوڑی تھی. پھر کہتا آنکھ جو اس کی کھلی तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मेरे तो जमीन से पैरों से जमीन निकल गई, कांप गया मैं। तो उसका बेटा भी साथ खड़ा था। आंख खुलने के बाद पहला फिक्रा जो था उसको अपने बेटे को कहते हैं अपनी जबान में, वो जुम्मा आ गया है, यानी जुम्मा आ गया। तो जुम्मे को वहाँ पिक्चर तब्दील होती है ना, पता नहीं हमारे सिस्टम होते जुम्मे में नई पिक्चर लगती है। कहते वो पिक्चर हाउसेस थे उसके, कहता जुम्मा आ गया पिक्चर तब्दील किए नहीं, कौन सी पिक्चर लगा रहे जुम्मे पे नहीं। डॉक्टर कहता है कि मेरे तो पाँव से जमीन निकल गई, मैं खुदा के वास्ते डरो, ये तो क़यामत है बिल्कुल। अभी तो एक सांस से वापस आया, अब तू ये पहला सवाल तो रही है कि तूने पिक्चर चेंज कर दी, कल तो नई पिक्चर लगाई या नहीं लगाई तूने। ये है दुनिया, गलबा होता है इंसान के वजूद पर। हम कहते हैं पता उस वक्त चलता है इंसान उस हकीकत में जाता है। आज जिस चीज़ को आप मुसलत करेंगे अपने अपने जुनून पर लाएंगे, वही चीज़ आपके कल काम आएगी। इन चार तस्वीर से काम नहीं चल जाता, ध्यान कहीं जा रहा तस्वीर मारे जा रहे, ख्याल उधर जा रहा तस्वीर मारे जा रहे, ठीक है फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह शुगल कर रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मकसद मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये मकसद नहीं है। अच्छा, अब हमने दुनिया को हवा बना लिया है। देखिए अब अल्लाह वालों ने देखें किस तरह दुनिया, आखिर बड़ी दुनिया आई है, अल्लाह वाले बने हैं माशाल्लाह काम। लेकिन अल्लाह को पाया ही होगा, किसी ने नहीं पाया होगा, आपने पाना है, जिसने पाना है हाथ खड़ा करे, सही बात है। चलो ठीक है, नुस्खा मैं बताता हूँ, पर्दे आज गिरा देते हैं दुनिया के इंशाल्लाह। सूफियों का यही होता है कि सिर्फ तकरीर नहीं होती, पहले बीमारी चलती है, बीमारी के बाद इलाज बताते हैं, इलाज के बाद फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। गपें शपें नहीं चलती हमारे मामले नहीं है, आदमी कुछ लेके जाए ना बापी, अब मैं ये सब कुछ बता दिया आगे जी, अब आगे करें हम क्या, मैं फिर जो मैं सीख के हूँ मैं भी आपको बताऊँ क्या होना चाहिए। इस हदीस की हदीस से सच चलेगा, हदीस और कुरान होगा अल्हम्दुलिल्लाह, गपें नहीं होती हैं। तो अब पे ये हो गया कि सबसे बड़ा पर्दा क्या हो गया, दुनिया। अब दुनिया को कैसे निकालें, नमाज हमारी ज़ाय हो रही है, हमारी इबादत ज़ाय हो रही है, हमारी जवानी ज़ाय हो रही है, हमारा बुढ़ापा ज़ाय हो रहा है, कब्र आ गई, पर्दा नहीं हटा दुनिया की, मशगूलियत तो वहीं जमा है हमारे सीने के अंदर। इस खबीस दुनिया से कैसे जान छुड़ा है, दुनिया तो है बाकदर ज़रूरत है, छुड़ाना चाहते हैं नहीं। अभी बास वैसे होता है कि जब किसी चीज़ को आ जाए तो कहते यार ये दुनिया निकल जाएगी, उसका दिल नहीं करता, कहते सोचेंगे जी कि कहीं दुनिया निकल ही जाए, मैं क्या करूंगा फिर, तो बीवी मुझे मार मार के निकाल देगी घर से, तो दुनिया छोड़ा है चल तेरा कोई काम नहीं मेरे साथ, हमने तो अभी वहाँ जाना था, फिर दुबई जाना था, फिर तो फला जगह जाना था, दुनिया छोड़ा है सारी चीज़ें। ऐसे नहीं जाती दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी दुबई आ जाएगी अल्लाह के फजल से, फिक्र ना करें, बहुत लज़त आती है दुनिया को छोड़ने के बाद। मैं भी आपके साथ ही हूँ, मैं तो आपसे ज़्यादा दुनिया जा रहा हूँ। तो अब क्या है, देखिए भाई दुनिया की अल्लाह ने किसी चीज़ को जब हुक्म देते हैं कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। अच्छा ये दुनिया है क्या, मैंने सोची एक हदीस पर, तो वही मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए ये दुनिया बनती कैसे है, दुनिया नाम है ख्वाहिशात का, मेरी बात समझ रहे हैं, जिसको समझ ना आया करे हाथ इस तरह कर दिया करता कि मैं रिपीट कर दूँ, मकसद समझानी ही बात है। दुनिया कैसे बन जाती है, क्या चीज़ है दुनिया हमारे अंदर डेवलप करती है, दुनिया नाम की चीज़ क्या है, शहवात का नाम है, शहवात का नाम है, क्या चीज़ है। अब हदीस आता हूँ, मैं हदीस सुनाता हूँ आपको, देखें कि किस तरह वर्क होता है सब चीज़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान के दिल के अंदर है, तो सारा दिल का मामला नहीं सारा, इंसान के दिल के अंदर एक कोना है, कॉर्नर एंड हार्ट, एक कोना है दिल के अंदर, क्या है एक कोना है, वो कोना पूर्ण नहीं होता। अल्लाह क्या है, पूर्ण समझते हैं, फुल नहीं हो रहा, क्या प्यारी बात है, वो कोना जो फुल नहीं हो रहा। अब उसको फुल करने के लिए आदमी क्या करता है, वो ये समझता है कि यार उसको एहसास नहीं, दुनिया आ जाए शायद तसल्ली हो जाए, कोना फुल हो जाए, वो दुनिया की तरफ भागता है, पैसे की तरफ भागता है, औरतों की तरफ भागता है, शहवात की तरफ भागता है, लेकिन वो सब कुछ करे जा रहा है लेकिन वो फुल नहीं हो रहा कोना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुभान, गौर से सुन रहे हैं बात, असल जो दुनियादार हम बने हैं ना, मैं जो दुनिया के पीछे भाग रहा हूँ पैसे होने के बाद और पैसा मांग रहा हूँ, वो तसल्ली नहीं हो रही दिल के अंदर, मतलब समझे, तसल्ली नहीं हो रही, क्योंकि वो चीज़ भर नहीं रही। बस ये गिलास है, जैसे अब मुझे प्यास लगी है और प्यास मेरी पूरी नहीं हो रही, तो मैं गिलास पानी पिए जाऊँगा ना, क्योंकि पूरी नहीं हो रही, तलब मेरी ख़त्म नहीं हो रही। इसी तरह वो जो कोना है जो कॉर्नर है दिल के अंदर वो फुल नहीं हो रहा। अब फुल ना होने की वजह से हम समझते हैं शायद इस वजह से हो जाए, शायद इस वजह से हो जाए। वो तसल्ली देने के लिए, उस कोने को फिल करने के लिए हम हर चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं कि शायद इससे फुल हो जाए। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं? इसलिए हम दुनियादार बनते हैं। हमारे दुनियादार ईमान के बाद दुनियादार बनने की वजह यही है कि वो जो कोना अल्लाह पाक ने खाली रखा है वो फुल नहीं है। जब वो फुल नहीं है तो हम उसको फुल करना चाहते हैं इन बाकी चीजों के साथ कि दुनिया के साथ पैसों से फुल हो जाए, चाहे फला चीज से मकानों से फुल हो जाए, लेकिन हकीकत तो वो उससे तो फुल होने ही नहीं, वो चीज उसके लिए फिट ही नहीं है। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, हाय कहते हैं ये कोना किसी चीज से फिल नहीं होगा, और अगर वो फिल हो जाए कोना तो दुनिया निकल जाती है। बात समझ आ गई? जैसे वो कोना फुल होगा फिर दुनिया की क्या जरूरत आदमी को, फिर तो मुतमिन हो गया आदमी, फिर तो मुतमिन होगा, उसको फिल करने की जरूरत नहीं है, फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें आ गई, फिर तो अपने रब की तलाश पूरी मुकम्मल उसकी होगी, क्योंकि वो ख्वाहिश उसकी पूरी होगी जो रोक रही थी अल्लाह को तलाश करने के लिए। जब उसको आपने फिल कर दिया, बिल्कुल सील कर दिया, कोना फुल हो गया, तो अब तो दिल तो एक ही की तरह एक ही के लिए रह गया, और दिल जो है वो सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। दिल सिर्फ अल्लाह के लिए, याद रखना, दो चीजें नहीं समा सकती इस दिल के अंदर। अल्लाह ने दिल सिर्फ इंसान का जो बनाया अपने लिए बनाया, तो दूसरी चीज घुसड़े जा रहे हैं अंदर ही बीच में उसको फिल करने के लिए। तो अल्लाह के नबी ने एक बड़ी चीज बता दी, कहते मैं बताऊं किस चीज से फिल होगा, पता है किसी को? बता दूं मैं, फिल करेंगे उसको, सील करेंगे? नबी पहले हाथ उठाए, सर करना पड़ेगा तो फिर, ताकि दुनिया निकल जाए, सही है? अल्लाह के नबी इरशाद, ये सब हदीसें सुना रहा हूँ, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि ये जो कोना है भाई, किसी चीज़ से फील नहीं होगा, ना मकानों से फील होगा, ना दौलत से फील होगा, ना बैंकों से फील होगा, ये एक ही चीज़ से फील होगा, फील करना चाहते हो, वो किस चीज़ से? अल्लाह के जिक्र से फील होगा। ठीक कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह ने बिठाया हम इस चीज़ के लिए, कितना अल्लाह का कलम है बताएं यार, ये वजह है, ये है अल्लाह का जिक्र, कि वो जो कोना फील होगा किस चीज़ से होगा? अल्लाह का जिक्र से। अब हमने काम क्या करना है? उस कोने को फिल करना है, किस चीज से? अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह की तलाश को जारी रखो, मैं महबूब को पाओ ना पाओ। आज मुझे बात समझ आती है हजरत की, वो बात जुड़ गई कि महबूब को पाओ ना पाओ, तलाश जारी रखो, यानी जिक्र को जारी रखो, फिक्र ना करो, हिम्मत ना हारो, तुम जिक्र को जारी रखो, जैसी वो कोना फिल हो गया तुम्हारा, इंशाल्लाह रब तुम्हें मिल जाएगा, उसी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब हमारा काम क्या है दोस्तों, अब इस चीज को समझ, हमने क्या करना है? उस कोने को फिल करना है, किसे करना है? अल्लाह के। ये हदीस सुनाई है मैंने पॉकेट से, कोई चीज नहीं, किताबें दिखा सकता हूं आपको, बता दो कोई, मैंने हर चीज कुरान हदीस से बता दू। तो क्या होगा? अब हमारा काम ये है कि हमने जिक्र को अख्तियार करना है कसरत के साथ। अब जिक्र कितना? जितना फुल कर दे हमारे खाने को। कैसे पता चला खाना फिल हो गया? जब वो खाना फिल हो जाएगा तो फिर मैं कुत्ते की तरह भागता नहीं फिरूंगा, फिर मुझे मुतमिन हो जाऊंगा मेरे पास अलमदा पैसा है, फिर हम उस स्टेज पे आ जाएंगे जैसे कि हजरत फरमाते के भाई घर में जो चीजें हैं उसको पहले बाहर फेंको, अल्लाह आज दिया कल भी देगा। जब खाना फील हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह इंसान ऐसे बातें करना शुरू कर देता है। कोई उनके भाई, वो जो लोग ऐसी बातें करते थे उनके पास जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं आते थे, कोई ऐसी बात, उन्होंने खाने को फील कर लेते हैं वो लोग। एक की बात नहीं है, अपने हजरत की बात नहीं कर रहा, बल्कि करोड़ों इंसान मैं आपको दिखा सकता हूँ अल्लाह के वली जिनको मतलब, जो अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं। इसलिए हम उनको अल्लाह को दोस्त कहते हैं कि उन्होंने अल्लाह को पा लिया होता है, और अल्लाह ऐलान करता है अल्लाह वली जनामुन, मैंने इनको दोस्त बना लिया, इन्होंने मुझे पा लिया है, इन्होंने उस खाने को बंद किया। ईसा शाम का कॉल कर, तू दुनिया का दुश्मन तू बना, अल्लाह महबूब तुझे बनाएगी। कितनी क्लियर बात की है। तो जिक्र ये नहीं हमने दोस्त पांच पर नहीं, जिक्र को उस वक्त तक खींचना है अपनी जान, यानी जिक्र को हमने मुसल्लत कर लेना है। जिस तरह दुनिया को मुसल्लत किया है ना, आज ही किस तरह मुसल्लत किया है, टेलीफोन भी दुनिया बता रहे हैं, माल भी दुनिया बता रही है, हम उंगली भी दुनिया बता रही है, तीन चार पांच एकदम बता देंगे, कंप्यूटर भी दुनिया बता रहे हैं, हमारे वो जो सारे रखे हैं हर चीज दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया मुसल्लत है हमारे पास। इसको कहते हैं क्या? मुसल्लत हो चुकी है, एक एक चीज हमारी जो है वो दुनिया की तरफ लेके जा रही है। बोला ना, मान है या नहीं? कंप्यूटर भी, हमारी स्क्रीनें भी, हमारे जेब में भी, हमारे टेलीफोन में भी, हर चीज जो है, आज जितने मैं बैठे ना अभी भी मैं दिखा सकता हूँ, हर एक के पास जो होगा यही होगा हिसाब किताब, हिसाब किताब। तो जिस ठीक है, हमने दुनिया को मुसल्लत कर लिया, इसी तरह जिक्र मुसल्लत हो जाए हमारे, जिक्र मुसल्लत हो जाए, इतना जिक्र करें कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसल्लत हो जाए। जिस वक्त जिक्र मुसल्लत हो जाएगा, ये नहीं चार कर लिए पांच तस्वीर, मुसल्लत करना है उस वक्त तक करने के जबकि दुनिया की प्यास बुझ जाए और अल्लाह की आग लग जाए। जब तक मुतमिन ना हो इंसान, रास्ता तो बता दिया अल्लाह पाक ने, तरीका भी बता दिया और वजह भी बता दी, सब समझ आ गई ना बातें। अब करना हमारा काम है भाइयों, जिसने हिम्मत की अल्हम्दुलिल्लाह वो रास्ता पा लेता है और अल्लाह का दोस्त बन जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसको पकड़ लेता है, अल्लाह उसको महबूब बना लेता है, महबूब बना लेता है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजता है, जा फलां गांव में जा, फलां बस्ती में जा, वो गुनाहगार जो इंसान है ना, वो सियाकार जो इंसान है, उसने अब क्या काम कर लिया, उसने मेरे जिक्र को मुसल्लत कर लिया, जा उसके ऐलान करके मैंने उसको महबूब बना दिया है। फरिश्तों में ऐलान किया जाता है, पहले आसमान पे, दूसरे आसमान, सातवें आसमान के फरिश्ते, मिलियन मिलियन फरिश्तों में कहें कि फला इंसान अल्लाह का महबूब बन गया है। फिर कहता है अल्लाह नीचे जमीन पे जा, फिर वो जमीन पे आते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम और कहते हैं एक एक जगह पे ऐलान कर दे कि मेरा महबूब बन गया है। हत्ता कि उस इंसान को समंदर के जो मछलियां हैं वो भी पहचानने लगती हैं कि अल्लाह का दोस्त है। कैसे पहचानती हैं? एक जहाज चल रहा है, ये मैं आपको वर्बली बात करता हूँ, जहाज चल रहा है पानी का, ठीक है ना, अब सब बैठे हैं, वो बेचारा बैठा है, उसको क्या पता है मैं अल्लाह का दोस्त बन गया हूं। ये जरूरी नहीं होता कि उसको पता चल जाए मैं अल्लाह का दोस्त हूं, ये नहीं है कि कोई सर्टिफिकेट आएगा ऊपर से फरिश्ते आएंगे, नहीं, कोई ऐसी चीज वो आम होता है, उसको गम फिरा, उसको तो गम लगा ही रहता है, उसको थोड़ी पता है मैं अल्लाह का दोस्त बन गया हूं। ये तो पूरी दुनिया को पता होता है, लेकिन होता क्या है कि दोस्त कैसा होता है सारी दुनिया जानती है, वो तो हर चीज जानती है, उसको ये अल्लाह का दोस्त है। तो जब वो बेचारा समुद्र में सफर कर रहा होता है और अगर तूफान शुफान आ जाए, कुछ हो जाए, तो क्या होता है, मछली भी उसको बचाती हैं और समंदर भी उसको बचाता है, हवाएं भी उसको बचाती हैं, उस एक आदमी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो किश्ती डूब नहीं सकती, जिसको हम करामात कहते हैं, अल्लाह वालों की करामात कहते हैं, क्योंकि पहचाना गया है उस शख्स, कोई नहीं रोक सकता उसको, ऐलान हो चुका है उसका। क्या किया उस शख्स ने, क्या काम किया था उसने, बस पर्दे हटाने, दुनिया का पर्दा हटाया, तो उसने अपने जो सुराख था उसको किससे फिल किया था, अल्लाह का जिक्र, जिक्र को मुसल्लत कर लिया हर वक्त, अल्लाह 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 दिल के साथ कल में हर वक्त वजूद में अल्लाह था। उसने उस वक्त तक अल्लाह का, जब तक कि उसकी सारी ख्वाहिशात नहीं मिट गई, दुनिया का नाम निशान नहीं रहा उसके दिल में, कनात आ गया अल्लाह को, बस उसको इतना यकीन है कि ये आज भी दे रहा है कल भी देगा, जिसने आज खिला दिया कल भी खिला देगा। होता क्या है फिर कि उसको दिल कर रहा है मैंने मुर्गी खानी है, हैं जी चिकन खाना है, लेकिन घर में आलू है, सुबहानअल्लाह, ऐसे मैं आपको ये करामात बता रहा हूँ, वो आलू खा रहा है और मज़ा उसको मुर्गी का आ रहा है, वो कसम खा कहता है मैंने आज मुर्गी की टांग खाई यार, मैंने कोरमा खाया, लोग हैं पागल हो गया, कहता है मैं कसम खा रहा हूँ यार, नज़र आलू आ रहा था, हो गया क्या, और वो कौन सी मुर्गी होती है, आसमानों से आई होती है जन्नत से। अल्लाह के दोस्तों बन के देखें इस खाने को पूरा करने किसी तरह, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे और हमें इस पर अमल करने की तौफीक। आप समझें जिक्र का मजा, आप फिर जिक्र करते हैं, इस खाने को फिल करें।